शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। सत गुरुवार को बाबा वृक्षपतिवार भी कहते हैं, और इसी वृक्षपति शब्द से आया है बृहस्पति। बृहस्पति, तो जिस पर बृहस्पति की दशा बैठती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। राहु की दशा होती है तो दुर्भाग्यशाली है। तो हम सब ब्राह्मण बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि यह संगम युग को बाबा नाम देते हैं ईश्वरीय युग। तो इस ईश्वरीय युग में हम सभी ब्राह्मण जो सचमुच सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वो बृहस्पति की दशा का अनुभव कर रहे हैं। हमारा कदम कदम पर कितना भाग्य बनता है, किस आधार पर भाग्य बनता है? हम पवित्र बनते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, ज्ञान रत्न जमा करते हैं, फिर दान करते हैं, पुण्य कमाते जाते हैं, तो कितना बड़ा भाग्य है ये। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दिया है, तुम सब हो ईश्वरीय संतान। तो ये कभी भूलो मत, हम ईश्वरीय संतान है। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, लौकिक तो है ही, लेकिन अब तुम्हारे अलौकिक और पारलौकिक पिता कि तुम संतान हो। कितने बड़े पिता आपको मिले हैं, तो कितने न पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो सदा उस भाग्य की सराहना करते रहना, गुण गाते रहना और अपने भाग्य को बढ़ाते रहना। तो आज की बाबा की मुरली भी बहुत ही सुंदर है। बाबा ने कई बातें रमणीक रूप से भी कही है, तो सुनते हैं। आज 6 मार्च 2025 है। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ये शरीर में प्रकृति में हमारा सिंहासन है, तो जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, शिव बाबा को अपना सिंहासन नहीं है, अपना शरीर नहीं है। प्रश्न है, जिन आत्माओं को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, हर एक अपने से पूछे, मैं अपने आप को ईश्वरीय संतान समझता हूँ? ये स्मृति सदा रहे, हम ईश्वरीय संतान है। तो ईश्वरीय संतान जिनको ये स्मृति है मैं हूँ वो, तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी, क्या निशानी होगी? तो जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, बहुत बड़ी निशानी होगी, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती है, उनकी दृष्टि बहुत शुद्ध होगी, पवित्र होगी। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती है जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती है। तो यही बड़ी सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई है, कैसे दृष्टि को हम पवित्र बनाएं। हम ईश्वरीय संतान हैं, एक बाप के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो ब्रह्मा बाबा हम दोनों का पिता है, अब सबका पिता है, उनके बच्चे हैं, फिर शिव बाबा हम सब आत्माओं का पिता है, तो कुदृष्टि कैसे जा सकती है? इसलिए बाबा कहते हैं, जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बन गए तो कुदृष्टि गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत है, आकाश सिंहासन छोड़कर बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, तो बहुत सुंदर गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं कि बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। परम धाम है आकाश सिंहासन, आकाश से भी परे ब्रह्मलोक सिंहासन कहेंगे, तो वो सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वो छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। ये आकाश तत्व है किसका सिंहासन? ये आकाश तत्व है जीव आत्माओं का सिंहासन, क्योंकि यहाँ जीव आत्मा बनते हैं, परम धाम में शरीर नहीं है, तो वो आत्माओं का सिंहासन है। ये आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन वो महतत्व है शांति धाम, जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती हो। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, अब उनको कोई सपोर्ट तो चाहिए नहीं, खड़े हैं, आपसी अट्रैक्शन है उनका, तो वो खड़े हैं। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आत्मा को परम धाम में खड़ा रहने में, रहने के लिए, तो बहुत छोटी छोटी तुम आत्मा ही वहां रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है, क्या ज्ञान है? जैसे स्टार कितना छोटा है, आकाश में सितारा देखते हैं, यहाँ से धरती से देखते हैं तो कितना छोटा सितारा दिखाई देता है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है, परम राम सिंहासन छोड़कर ब्रह्मा सिंहासन लिया है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, मुझे बुलाते ही है पतित पुरानी दुनिया में। गीत में है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। तो वास्तव में हम आत्माएं भी वहां की रहवासी है, तो ये देश अपना नहीं है। हाँ, तो आकाश सिंहासन छोड़कर हम भी तो यहाँ आए हैं, जैसे शिव बाबा आते हैं। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर के रहते हैं। स्वर्ग रच लिया, सभी बच्चों को लायक बना लिया, देवता बना लिया, तो फिर बाबा वानप्रस्थ में जाके रहते हैं, वाणी से परे परम धाम में जाके रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार ही नहीं है, वो तो दुख सुख से न्यारे है ना। दुख सुख तो यहाँ होता है, वहाँ परम धाम में तो न दुख है न सुख है, और वो न्यारे है शिव बाबा इससे। तुम तो सुख में भी आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। हाँ, वाणी तो मुख से कुछ बोलना वो तो अदूर, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की ये युक्ति देखो कैसी है, ये सबसे सुंदर युक्ति, सबसे अच्छी युक्ति पवित्र रहने की है भाई बहन। और दुनिया वाले इसी पर ही टीका करते ना, टोकते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, तो हम बनाते नहीं है, लेकिन आत्मा रूप में तो भाई भाई है, फिर ब्रह्मा की संतान भी सारी दुनिया है, उस हिसाब से तो हम सब भाई बहन है, तो कोई हम बनाते तो है नहीं, है वास्तव में, हमको बनाने की बात ही नहीं। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है कि भगवान ने आकर के सबको पवित्र दृष्टि बनाने लिए काम किया भाई बहनों, ये ऐसे कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी को, सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना उनके। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, भाई बहन है तो लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए, कुदृष्टि भी नहीं चाहिए तो लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान है। सभी को नशा है ना, हम कौन है? ईश्वरीय संतान। पहले क्या थे? पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हो, फिर सतयुग में क्या बनेंगे? दैवी संतान। हाँ, अभी आसुरी संतान थे, अभी ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। ब्रह्मा बाबा सदा याद है, हमारा पिता वो है और उसका भी पिता वही है, तो कुदृष्टि कैसे जाएगी? सतयुग में तो कुदृष्टि कभी होती नहीं, कोई देवी देवता कभी उनकी ऐसी कुदृष्टि नहीं होगी आपस में। कुदृष्टि कहाँ होती है? रावण राज्य में। तो रावण आकर के देह अभिमान में लाता है तो कुदृष्टि हो जाती है। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। कुदृष्टि भी नहीं रहनी चाहिए और कोई और की याद भी नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव होना चाहिए। प्रयास प्यार सबसे रखो, किसी से नफरत नहीं है, लेकिन सच्चा लव बाबा कहते एक से होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है, सबको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आधा कल्प तो रावण राज्य चला है जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको क्यों जलाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा को भी नहीं जानते, न रावण को जानते, न सच्चे राम को जानते हैं। जैसे फिर और क्या नहीं जानते? एक तो न शिव बाबा को जानते, न रावण को जानते। तीसरा, जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। तो देवियां भी कौन थी तो उसको भी नहीं जानते हैं, पैदा करते हैं फिर उनकी पालना करते हैं, पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं, तो कुछ भी नहीं जानते। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं, पर कौन है रावण बाबा कहते हैं उसको भी नहीं जानते, समझते कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा का भी लिंग बनाएंगे और फिर पूजा करेंगे, फिर मिट्टी में मिलाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, ऐसे जब यज्ञ रचते हैं उस समय ऐसे ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं न शिव बाबा को जानते हैं, न आत्माओं को भी जानते हैं, फिर भी फिर मिट्टी में मिलाएंगे फिर बनाएंगे, और फिर न रावण को जानते हैं और न ही देवियों को जानते हैं। करते सब कुछ है पर जानते नहीं। कहते भी है ना, अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे तो इसका मतलब रावण राज्य है। जब स्वतंत्रता का नारा लगा तो यही कहते थे, राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही नारा लगाया था। तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे तो बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं। एकदम जल गए थे काम चिता पर बैठकर, तो रावण ने सबको काम चिता पर बिठाकर जैसे जला दिया। फिर बाबा कहते हैं, बाप आकर फिर उन सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ज्ञान वर्षा होने से क्या होता है, उस वर्षा से क्या होता है, जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना। अभी भी देखो माउंट आबू में कितने पेड़ देखो, सब सूखे हुए पड़े। तो अभी जैसे ही मॉनसून शुरू होगा, पहली बरसात होगी, धीरे धीरे पत्ते आने लगेंगे। और फिर देखो रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में इतनी हरियाली यहाँ हो जाती है जो बात मत पूछो। झरने बहते हैं, हरियाली होती है, सारे पेड़ फिर से भरपूर हो जाते हैं। तो कई कहते हैं, अरे ये तो सारे पेड़ सूखे हैं, तो ये तो सब मर गए होंगे। मर नहीं गए हैं, ये फिर हरे भरे हो जाते हैं। विदेशों में भी ऐसे, जहाँ बहुत विंटर है, बहुत ठंडी होती है, तो सब पत्ते सूख जाते हैं, पतझड़ होकर सब सूख जाते हैं, लेकिन वो सूखे नहीं है। फिर बारिश होगी, फिर देखो कितने हरे भरे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ये भी ऐसे ही है, आत्माएं सब इस समय जैसे सूख गई है, बिल्कुल खाली हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। तो जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है, तो तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। सब कुछ नष्ट हो गया था हमारा, सुंदरता भी गई, धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया, सब कुछ चला गया था। फिर ज्ञान वर्षा होती है, फिर वापस सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, तो ज्ञान वर्षा से क्या होता है, तुम्हारे पर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर हरा भरा हो जाएगा सब कुछ, विश्व के मालिक बन जाएंगे, अभी तुम्हारे पर ज्ञान वर्षा होती है। भल तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, बाबा मना नहीं करते ग्रस्त व्यवहार में रहने की, भले रहो रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी रहनी चाहिए, बाबा मिसाल देते, जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा है और स्कॉलरशिप मिल गई और वो बहुत मेहनती है, वो पढ़ता है, आईएएस एग्जाम देता है मानो, और तो एकदम आईएएस ऑफिसर बन जाता है। उसका पिता तो बहुत गरीब है, परंतु वो बच्चा इतना बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा पोस्ट उनको मिल जाता है, तो देखो हाँ, तो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी उसके लिए। तो जैसे कोई गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि भी बच जाता है, वो भी बड़ों बड़ों के साथ फिर बैठेगा। था वो पहले गरीब का बच्चा, कभी बड़ों का की शक्ल भी नहीं देखी होगी, या बना कभी बड़ों के साथ थोड़ी बैठा होगा, लेकिन आईएएस ऑफिसर बन गया, बड़ा बन गया, बैरिस्टर बन गया, तो फिर बड़ों बड़ों के साथ बैठेगा। उसका पिता तो वो समझेगा, भाई ये तो गरीब है, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठता है, खाता पीता है। तो बाबा उसका मिसाल देते हैं, किसका मिसाल है, वो बहुत गरीब थी, लेकिन कैसे भगवान मिला तो कितनी खुशी खुश हो गई। तो बाबा भीलनी का मिसाल देते हैं, भीलनी गांव में रहती थी और एकदम शेड्यूल कास्ट, एकदम निचली जाति की थी, लेकिन उसको अंदर में खुशी थी, एक दिन राम आएगा, एक दिन राम आएगा, बस उसी इंतजार में रहती थी। और सचमुच जब राम उनके पास, श्री राम उनके पास गया, तो भीलनी इतनी खुश हो गई। उसके बाद बेर थे, अब वो बेर मीठे हैं खट्टे हैं, तो उसको समझ में नहीं आया, इतनी खुश थी। तो उसने क्या क्या, एक एक बेर को पहले चखा और फिर श्री राम को दिया, तो जैसे जूठा किया, जूठा करके फिर जैसे श्री राम को दिया, तो श्री राम ने तो बड़े प्यार से वो जूठे बेर भी भीलनी के खाए, लेकिन वो भूल गए कि मैं जूठा कर रही हूँ, उसको था मेरी श्री राम को खट्टे बेर नहीं मिलने चाहिए। तो देखो क्या थी और कैसे वो खुशी में नाचने लगी, क्योंकि श्री राम उनके पास गया। वो भी एक जंगल में, एक कुटिया में रहती थी, पर श्री राम उनके पास गया, तो भगवान मिला। तो क्या से, हाँ, भीलनी से हम क्या बन जाते हैं, देखो बाबा कहते हैं, तो वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भीलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। कुछ दिनों से बाबा ये पॉइंट की गहराई बताते हैं, जिन्होंने बहुत जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। तो ये निश्चय होना चाहिए, हमने सबसे जास्ती भक्ति की है इसलिए हम सबसे जास्ती ज्ञान ले रहे हैं। सबसे जास्ती माना किसको कहेंगे? सबसे जास्ती, सबसे जास्ती भक्ति माना शुरू से, जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ तब से शुरू से ही भक्ति शुरू की। सबसे जास्ती अर्थात शुरू से लेकर हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। सबसे पहले संगम पर बाबा मिलते हैं, फिर सबसे पहले फिर सतयुग में हम जाते हैं, फिर सबसे पहले भक्ति भी हम शुरू करते हैं। अब ये है ज्ञान युक्ति, ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। ये बात समझना, सबसे पहले ज्ञान, फिर सबसे पहले देवता पद, फिर सबसे पहले भक्ति, ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। तो बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय सारी दुनिया क्या बन गई है? जो बाप को नहीं जानते, बाबा कहते हैं सारी दुनिया नास्तिक है। नहीं जानते माना नास्तिक है। बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह दिया, तो नेति नेति कहना माना नहीं, अंत ईश्वर का हमने अंत नहीं पाया, माना ईश्वर को जानते नहीं है, तो नास्तिक हो गए। नेति नेति कह देते हैं, आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। वो भी परमात्मा को कहाँ जानते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं। बाबा कहते वो आकर के समझेंगे। अब फिर तो फिर क्या होता है, बाबा कहते कोई एक सन्यासी भी आ जाए तो उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे। चलो एक सन्यासी आ गया और वो कहता हाँ बरोबर गीता का भगवान शिव है, शिव परमात्मा है, वो ही हम सबका पिता है, और ऐसे सब कह दे तो दूसरे लोग को इन पर विश्वास थोड़ी करेंगे। कहेंगे इन पर तो बीके का जादू लग गया, ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सुना रहा है, इनको इन पर तो बीके का जादू लग गया। फिर उनके चेले क्या करेंगे, उनको तो गुस्सा आएगा, अरे ब्रह्मा कुमारियों ने हमारे गुरु पर जादू कर लिया है, जो वही सुनाता है, नहीं तो वो तो पहले तो ये सुनाता था ब्रह्म में लीन होना है आदि आदि, तो लेकिन अभी तो ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सुना रहे, तो वो क्या करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए और उस गुरु को उड़ा देंगे। ऐसे भी करेंगे, तुम तो ब्रह्मा कुमार बन गए हो, तुम निकलो, हम तो दूसरे को बिठाएंगे इस गद्दी पर। तो बेचारे वो भी डर जाते हैं कि भाई अगर हमने ऐसे ब्रह्मा कुमारियों की बातें सुनाई तो हम कोई उड़ा देंगे, हम कोई गद्दी से निकाल देंगे। तो उनके चेले को गद्दी पर बिठाए और उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं, उनको डर है ना कि हमारी गद्दी न चली जाए, फिर गुम हो जाते हैं। ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। जो बाबा के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए सारा ज्ञान। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं, बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। खूब सेवा करो, रहम दिल बनेंगे तब तो सेवा अच्छी कर सकेंगे ना। बहुत रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं पहले अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। अब अपने ऊपर रहम दिल कैसे बनेंगे, औरों की सेवा करेंगे तो औरों पर रहम दिल है, पर अपने ऊपर रहम दिल बनने का मतलब क्या है, अपने ऊपर रहम दिल बनो। कैसे, अपने ऊपर बेरहमी नहीं बनो। बेरहमी कैसे बनते हैं, अपने ऊपर रहम करना है। कैसे, वो भी बाबा समझाते हैं कैसे रहम करना अपने ऊपर। बाप को याद करना है। अब बाबा को याद करते नहीं है, कई ऐसे हैं ना मुरली सुनते हैं और ना कोई अमृत वेला करते हैं, कोई योग में बैठते, कुछ भी नहीं, बस सारा दिन सेवा 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 सेवा। तो बाबा कहते हैं ये भी अपने ऊपर रहम करना नहीं है, ज्ञान योग भी चाहिए, तब उसके साथ सेवा चाहिए, केवल सेवा सेवा नहीं। तो अपने ऊपर कैसे रहम करना है, बाप को याद करना है और पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। याद भी इतनी हो पावरफुल और अंदर की धारणा भी इतनी ही हो, ज्ञान योग भी उतना ही हो, तब कहेंगे कि पूरा रहम कर रहे हैं अपने ऊपर। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करना है, कैसे वो भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए, हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना, एडॉप्ट किया है ईश्वर ने हमको, अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनेंगे, मनुष्य से देवता सीधा नहीं बन जाएंगे, स्टेजेस है। मनुष्य से पहले हाँ बाबा की याद से, ज्ञान की धारणा से हमें कर्मातीत बनना है, फिर कर्मातीत बन के संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बन के फिर सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है, फिर परमधाम निवासी बनना है, फिर जाके देवता बनना है। तो कितनी स्टेजेस आ गई बीच में। तो बाबा कहते हैं पहले सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो ना, अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो। तो आज यही हम अभी आज डबल विदेशियों का क्लास कराएंगे, उसमें यही टॉपिक दी है बिकमिंग एन एंजल। तो अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी रास बच्चों को समझाया है, यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का, जैसे हाँ बाबा मिसाल देते फरिश्ते कैसे होते हैं, जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है, वो एस्ट्रल बॉडी होता है, पर फरिश्ता माना एंजेलिक बॉडी, दोनों में अंतर है। वो घोस्ट तो वो काली काली छाया होती है, कईयों को दिखाई देती है, लेकिन एंजल माना एकदम फरिश्ता, लाइट का आकार, जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, फिर वो दिखाई देती है, जिनके साथ उसका हिसाब किताब होगा उनको दिखाई देती है, किसने आत्महत्या की, तो वो उनको तुरंत शरीर समझो नहीं भी मिला तो फिर वो आत्मा तो भटकेगी, तो वो एस्ट्रल बॉडी में जैसे भटकती है और कुछ एक को दिखाई देता है काली छाया, कि आत्मा तो शुद्ध नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं परंतु उनको ही दिखाई देगा जिनके साथ उसका हिसाब किताब है, सबको नहीं दिखाई देगा। ये फिर है सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते, ये तो सफेद हाँ जैसे चांदनी की तरह वो दिखाई देते, जैसे गुलजार दादी को सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का यही साक्षात्कार हुआ। ये फिर है सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते, ये सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ज्ञान कहेंगे, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, बाबा कहते इसको ज्ञान कहेंगे। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए, टपकना चाहिए, हाँ घूमना चाहिए, फिर ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी हैं, अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं, बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए, इसलिए जब शिव बाबा आते हैं पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, क्योंकि साक्षात्कार कराना है बच्चों को, ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार कराया, तो इसलिए पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी ये है संगम युग, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे। हम सब ईश्वरीय संतान ईश्वरीय युग में बैठे हैं, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, फिर उसको दैवी युग कहेंगे, सतयुग को दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कुदृष्टि जाती है अगर, बाबा वार्निंग देते हैं, कुदृष्टि जाती है अगर फिर ऊंच पद तो पा न सके। अगर किसी के देह पर दृष्टि जाती है, कुदृष्टि जाती है, देह पर आकर्षण होता है, तो बाबा कहते हैं वो ऊंच पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना है। अभी विदेश से आए हैं सब, दौड़ दौड़ करके बाबा के घर में अपने अंदर शक्ति भरने, फिर वापस जब जाओ तो ये सब बातें भूल नहीं जाना। हाँ, कई बार भूल जाते हैं ना सब, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं भूलना नहीं, इतनी शक्ति भर जाए कम से कम एक साल तो रहे वो शक्ति, फिर दोबारा आओ। जो बाबा कहते हैं बादल यहाँ से भर के जाओ, फिर जाके बरसो और बरसते रहो, फिर आ जाओ भरने के लिए, बैटरी चार्ज करके जाओ, फिर वो धीरे धीरे तो लौकिक में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होने लगती है, लेकिन फिर आओ। इसलिए देखो हर साल आते हैं, हमने तो देखा डबल विदेशी हर साल कई आते हैं, हर साल आते हैं। हाँ, हमने देखा कितने बुजुर्ग भी हो गए हमारी माताएं, कल मिली हमको तो, लेकिन बाबा का घर हर साल जाना है, कुछ भी हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। तो देखो बाबा कहते हैं तो फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए, तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। बाबा को पता है संग दोष में आके भूल जाते हैं। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। तो न देह का आकर्षण, न कोई मोह का आकर्षण, मेरा बच्चा मेरा मेरा, बाबा कहते ये भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है, मोह की रग जाती है, तो बाबा ने उसको टाइटल दिया है। अगर किसी के प्रति भी मोह की रग जाती है तो बाबा उसको क्या टाइटल देते हैं, ये मोह। हाँ, ये बाबा कहते हैं अगर रग जाती है तो कहेंगे ये क्या, अच्छा ये तो अगर रग जाती है तो बाबा उनको कहेंगे ये मोह की बंदरी है। सुना क्या टाइटल मिला, मोह की बंदरी। अब मोह की बंदरी थोड़ी बनना है, तो बाबा उनको कहेंगे ये मोह की बंदरी है। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना, तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहां वो रावण की आसुरी संतान और कहां तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए क्या करना होगा, एक रस बनाना है तो क्या करना होगा, तो बाबा कहते हैं सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हो, तब एक रस अवस्था बनेगी। हाँ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये इसकी स्थिति ऊपर नीचे है, तो अगर ये देखते रहेंगे तो हमारी अवस्था एक रस कैसे बनेगी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है ये अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, तो ये बाबा कहते हैं इसमें हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में तो टाइम चाहिए ना। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, बिल्कुल देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुनते, ये तब होगी जब कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाएंगे या पता चलेगा ये सब हम इनसे न्यारे हैं, मना कर्मातीत के नजदीक जा रहे हैं। ये सब कुछ इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। अगर खींच होती रहे तो समझो कर्मातीत अवस्था से बहुत दूर है हम। तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी, इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। जो हमने दादियों में देखा ना, बाबा मम्मा में भी देखा, उपराम दादियां भी ऐसी उपराम हो गई तो कहेंगे भाई कर्मातीत अवस्था के नजदीक है। तो उपराम, बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए बाबा के सिवा और कोई बुद्धि में न हो, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएगा। अभी वो अवस्था थोड़ी है, सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस क्या बुद्धि में है, बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है जितना तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम ही जानते हो अभी वापस जाना है। शिव भगवानो वाच भी है ना, वो पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है, श्री कृष्ण न लिबरेटर है न गाइड है, श्री कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव है। पांडव माना पंडा, गाइड, पंडा उनको कहते हैं जो गाइड बनकर के यात्रा कराता है, वो पंडा होता है। तो बाबा कहते हैं पंडा शब्द पांडव से आया ना, पंडे बनते माना सच्चे पांडव। तुम्हारा नाम पांडव रखा है, तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, अभी तुम देही अभिमानी बने हो, तुम जानते हो अब वापिस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। तो बाबा को किसका मिसाल देते हैं, पुराना शरीर छोड़ना है, सर्प का मिसाल। तो सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब तुम्हारे इस समय के हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वो तो ये धंधा कर न सके, तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है, अब बृहस्पति की दशा बैठी है तो सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो, गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। अक्सर वो जो अच्छा शुभ कार्य करना होता है ना, तो कहते गुरुवार को करेंगे क्योंकि वो शुभ दिन माना जाता है। तो गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है, दो युग तक बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर होती है। बहुत मालामाल, बहुत धनवान बनते हैं, जन्म जन्मांतर चलती है, ये है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में तो हद की दशाएं चलती है, वो जो दिखाते हैं ना, जो ज्योतिषी लोग बताते हैं तुम्हारे ऊपर अभी ये दशा है, ये दशा है, वो तो हद की दशाएं हैं। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी तो पूरी डायनेस्टी होगी, इतनी बड़ी राजाई होगी, कितने उनके लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, सारी डायनेस्टी होगी, ऐसे राजाई होगी, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य चलता है, ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है। अब और सुंदर बात क्या, सतयुग में कैसे माता पिता महाराजा महारानी अपने बच्चे को सिंहासन देते हैं। तो तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज्य तिलक देते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं, वो भी है। कैसे फिर वो चेंज हो जाता है, वो भी बाबा ने ये सब साक्षात्कार कराया था। तो वहां तो बाबा कहते हैं माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज्य तिलक देते हैं। माँ बाप बच्चे को सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक देने के लिए पहले पांव धोते हैं और फिर उनको तिलक देते और उनको राजा बनाते हैं। तो माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। तो यज्ञ में सब ये साक्षात्कार हुए थे। तो बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। कैसे होगा कैसे होगा, बाबा कहते मूंझो मत। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को बनाओ। बस ये काम करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है, बहुत हिंसा की। हाँ, श्री कृष्ण ने कितनी हिंसा की, स्वदर्शन चक्र चलाया और ये असुरों को का गला काटा। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, ये तो कंठ कर लेनी चाहिए। सच्ची गीता, बाबा का ये ज्ञान कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। अब ऐसे लौकिक गीता में ज्ञान भी बहुत है, सब बहुत ज्ञान है, फिर योग भी है, योग में तुमको सिखाता हूँ। तो ज्ञान और योग दोनों बातें गीता में है। तो ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनानी चाहिए जिसमें सारा ज्ञान भी हो और योग भी हो। लेकिन तुम्हारा योग की अलग किताब है। कई पूछते ना आप लोग कैसे योग करते, उसका कोई किताब है? तो तुम्हारे लिए योग के भी अलग अलग किताबें हैं। हाउ टू मेक राजयोग इजी, राजयोग, ये सब कई किताबें हैं। तो वो ज्ञान से फिर अलग है। तो बाबा कहते तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, लोगों को योग सीखने की बहुत इच्छा है, तो योग का बहुत नामाचार है, इसीलिए नाम रखते हैं, अलग से किताब बनाते हैं, ताकि मनुष्य आकर के समझे। आखरीन ये भी समझेंगे कि योग तो एक बाप से ही लगाना है, किसी भी देहधारी से नहीं। कोई भी देहधारी में देवताएं भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, सब आ गए। तो योग तो केवल एक निराकार बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के खजाने में तो सही लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ये मम्मा के थोड़े छोटा सा छोटी सी मुरली है मम्मा की, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। हाँ मम्मा की मुरली है। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे का अंत कर सोझरे की आदि करते हैं। ज्ञान से है रोशनी और भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ मिले तू वहीं ले चल। तो ये है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में न, मुक्ति में क्या कहेंगे, न मुक्ति में न चैन है न बेचैन है। आत्मा तो जैसे न्यारी है तो न चैन है न बेचैन है। सत्युग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में अगर कोई अपवित्र है तो वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाएगी। क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते हैं न पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपने इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति शारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता भी हो और महानता भी हो। स्नेह भी हो, मधुरता भी हो और महानता भी हो, सत्यता भी हो। क्या क्या हो आपके बोल में, स्नेह मधुरता महानता सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। ये सब आपके बोल में हो। हाँ, स्नेह मधुरता महानता सत्यता नम्रता, फिर निर्भय भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, सभ्यता के बोलो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। और वो शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं, मीठे लगते हैं क्योंकि मुस्कुराकर बोल दिया ना, समझो बड़े कड़ी बात भी है पर मुस्कुराकर बोलते हैं तो वो बुरी नहीं लगती है। वो वहां कमाल दिखाई देती है हा? और वो शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ, यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। हाँ, यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। डबल फॉरेनर्स का प्रोग्राम।